तो पारा 2 में हमने अभी तक 4 रुकू की है। उसका खुलासा यही था कि जब भी किबले बदलेंगे आवाज़ें उठेंगी, लेकिन आपने अपना काम करते रहना है। फस्तबिकुल खैरात, अपनी नेकियां कभी कम ना करें, अपने हिस्से की नेकी कभी ना छोड़ें। जाइए घर जाके सो जाए, कौन रोकता है आपको। बंद करें सब कुछ और जाकर आराम फरमाइए। लेकिन क्या पता उस सोने के बाद आराम मिले कि ना मिले, जो आपको यहाँ की खैर के बाद मिलता है। तो अपनी नेकियों को बढ़ाएं। अकेले सुनते हैं दूसरों को साथ सुनाएं, अकेले आते हैं दूसरों को साथ लेकर आएं। आपकी गाड़ी में एक से ज़ायद की जगह है, उस जगह को पूरा कीजिए और बेहतरीन तरीके से अपनी नेकियों को बढ़ाएं। अब आपकी मेरी उम्र और अब आपकी मेरी तरजीहत माल बढ़ाने की नहीं रही। आप देखिए कि लोग एक ख़ास हद तक माल कमा लें ना, तो फिर उसके बाद बस थक जाते हैं। आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि जो माल कमाने में रात दिन एक कर देते हैं, और कुछ नहीं तो अपने बाप भाई को देख ले, शौहर को देख ले, सुबह सबसे पहले जाने वाले और शाम को सबसे आखिर में आने वाले, बड़े बड़े घर बनाकर उसका एक एक बिल अदा करने वाले और खुद सबसे कम उस घर में रहने वाले। चंद सफ़ेद जोड़े लट्ठे के उनके लिए काफ़ी हैं। एक रोटी सालन जो आप दिन में 2 बार उनको भेज दें, खिला दें, वो काफ़ी हैं। आप जाकर देखिए तो उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। फस्तबिकू इलल माल, फस्तबिकू इलल प्रॉपर्टी, फस्तबिकू इलल दुनिया और सो ऑन। आप इसी सब के बीच में रहते हुए फस्तबिकुल खैरात बन जाइए। फिर बहारें तो देखें, फिर आप ज़रा वो रंग तो देखें जो अल्लाह ने आपको लगाने हैं। फिर दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि किबला तो एक जहद के लिए था, असल बात तो ये थी कि तुम करते क्या हो, अल्लाह की तरफ नज़रें करते हो कि नहीं। और जब भी कभी राहे हक की तरफ निकलोगे तो या अय्युहल्लज़ीना मनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, फिर कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी, फिर मुख्तलिफ़ तरीके से तुम्हें उस मामले में जाना तो पड़ेगा। और फिर मसाइब खमसा, वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई व नक्सिन मिनल अमवाली वल अन्फुस फबश्शिरिस साबिरीन। और खुशखबरियाँ पाते पाते हम उम्मते वसत का किरदार अदा करने के काबिल बनते बनते जिस चीज़ पे रुके थे, वो रुकू नंबर 5 शुरू होगा आज, कि जिसमें अब उम्मते वसत को एक ऐसा फ्यूल दिया जा रहा है कि जिस फ्यूल से वो हर नेकी कर सकते हैं। दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी न छोड़े हमने, कि बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और वो फ्यूल क्या है? हुब्बे इलाही का, अल्लाह से मोहब्बत। अल्लाह से मोहब्बत बंदे को इतना मिस्टीरियस कर देती है, ये इतना एनर्जेटिक कर देती है, इतना एम्पावर्ड कर देती है कि वो खुद भी नहीं जानता कि मैं कौन कौन से मरहलों से गुजर गया। घोड़े तोड़ा दिए, कश्तियाँ जला दी, तारक बिन ज़ियाद ने ये कर दिया और ये कर दिया, और हज़रत मूसा पानी में कूद गए। ये मोहब्बत के साथ होता है। तो रुकू नंबर 4 164 से 167 है। टॉपिक लिखिए अहले ईमान अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं। पहले तो अपने लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका, और साथ ही साथ अपने ईमान की क्वालिटी को भी देखें। असल में ईमान है ही अल्लाह से मोहब्बत। देखिए लिखिए लफ्ज़ ईमान, अब इसमें सेलिफ और या उतार दें, पीछे क्या रह गया? मान। ईमान असल में अल्लाह पे मान है, और मान के लिए मोहब्बत लाजमी है। मुझे उसी पे मान है जिससे मुझे या जिसको मुझसे मोहब्बत है। दूसरे कहेंगे आराम से बैठे जाएं। मान माँ पे मान हो सकता है, बाप पे हो सकता है, बीवी शौहर बच्चे उस्ताद शागिर्द साथी, कितने लाड़ करते हैं हम एक दूसरे के सारा दिन, ये मान है। तो जिसका अल्लाह पे मान बन गया, जिसको अल्लाह से मोहब्बत महसूस हो गई, उसके बाद फिर उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं। उसको अपनी ज़िंदगी इतनी हसीन लगती है, वो कहते मैंने नहीं मरना, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, जन्नत में तो जो होगा वो होगा। उसकी दुनिया की ज़िंदगी जन्नत बनती है। आप दुनिया की ज़िंदगी को जन्नत बना ले, आखरत की जन्नत खुद ही मिलेगी। और दुनिया की ज़िंदगी की जन्नत अल्लाह से मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत का सौदा है, जिसने ये सौदा चुका लिया या जिसने ये सौदा कर लिया उसको फिर कोई पीछे नहीं डाल सकता। असल बात पता क्या है कि हमने अभी ये मिठास चखी कम है। साहबा को अल्लाह के नबी से शदीद मोहब्बत थी, दे वर इन डीप लव ऑफ अल्लाह। जितनी मोहब्बत हमें आज दुनिया से है ना, साहबा को अल्लाह से थी, रसूल से थी और अल्लाह के रास्ते के कामों से थी। जितने हमारे ड्रीम्स और हमारे ख्वाब इस दुनिया और दुनियादारियों के हैं ना, जितनी हमारी मसरूफियात इस दुनिया की है ना, उतनी साहबा को अल्लाह से थी। वो कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी थे, गोश्त के पोस के इंसान थे। दर्द होता था, चोट लगती थी, खून निकलता था, लेकिन बिलाल को दर्द ही नहीं हो रही। क्या हो सकता है? क्यों, बिलाल को कोई सुन करने का इंजेक्शन लगाया हुआ था उमैया ने? फिर भी आहत आहत की पुकार थी, जिस्म से खून निकल रहा है, चर्बी पिघल कर उस सारे जो उन्होंने आग जलाई होती थी उसको बुझा रही है। और क्या हजरत बिलाल को दर्द नहीं होती थी? नहीं, अल्लाह की मोहब्बत बंदे को बेहोश कर दे देती है। एनेस्थीजिया देकर जिस्म काट देते हैं, पेट काट देते हैं, दिल बदल देते हैं आज। अल्लाह की मोहब्बत वाकई बंदे को बेहोश कर देती है। और इसके बगैर जो जी रहा है ना, वो फीकी चाय पी रहा है, उसकी ज़िंदगी में टेस्ट तो कोई नहीं है। सारा दिन मारा मारा फिरता है, अच्छा अब ये कर लूँ शायद मज़ा आ जाए, अच्छा ये वो कर लूँ, ये कर लूँ ना कर लूँ। अल्लाह सुबहान तआला ने इधर इनायात में आपको मुझे क्या बता दिया कि तुम कायनात पे ज़रा एक नज़र डाल के तो देखो, तुम्हें लग पता जाएगा कि दुनिया की सबसे हसीन चीज़ क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। इन नफ़ी खल्क़ समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़ लैली वन नहार वन नहारी वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरी बिमा यन्फ़ऊ अन्नास वमा अन्ज़लल्लाहु मिनस समाई मिम्मा यन्फ़ह्या बिही अल-अर्ध बादा मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाबतिन वतस्रीफ़िर्रियाह والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। इस आयत का एक नाम रखा गया आयतुल आयात। कुरान पाक में मुख्तलिफ किस्म की जो आयात है ना, इकट्ठी नहीं है एक जगह पे, इस एक में 7 से ज़ायद आपको इशारे मिल जाएंगे यूनिवर्सल साइंस के, जिसको आप कह सकते हैं कि नेचर पे गौर व फिक्र करो। क्या फरमाया? आसमानों और ज़मीन की पैदाइश, रात दिन का हेर फेर, कश्तियों का लोगों को नफ़ा देने वाली चीज़ों को लिए हुए समंदर में चलना, आसमान से पानी उतार कर मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देना, इसमें हर किस्म के जानवरों को फैला देना, हवाओं के रुख बदलना और बादल जो आसमान और ज़मीन के दरमियान मुसख़्खर हैं, इनमें अक्लमंदों के लिए कुदरत इलाही की निशानियाँ हैं। व मिनन्नास, बास लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के शरीक औरों को ठहरा कर इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए। इसके बरक्स वल्लज़ीना मनु अशद्द हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में बहुत सख्त होते हैं। काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अज़ाब को देख कर जान लेंगे कि तमाम ताकत अल्लाह ही को है और अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है, तो हरगिज़ शिर्क ना करते। अब क़यामत का एक मंज़र देखिए, जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे और अजाब को अपनी आंखों से देख लेंगे और कुल रिश्ते नाते टूट जाएंगे, और ताबेदार लोग कहने लगेंगे काश हम दुनिया की तरफ दोबारा जाएं तो हम भी इनसे ऐसे ही बेजार हो जाएं जैसे ये हमसे हैं। इस तरह अल्लाह ताला इन्हें इनके अमाल दिखाएगा, इनको हसरत दिलाने को, ये हर किस जहन्नम से नहीं निकलेंगे। तो ये है जी आयत 164 से 167। ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में शदीद होते हैं, शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। इसमें आप देखिए अल्लाह ताला की 7 निशानियाँ गिन के देख लीजिएगा, और सारी निशानियाँ दिखाने का मतलब क्या है कि सारे इख्तियारात अल्लाह के पास हैं, उस पर ईमान ले आओ। आप अल्लाह की रज़ा पाने की तलब में सुन रहे हैं ना इस साल दरे कुरान, रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन बनना है ना, तो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को शरीक बनाना छोड़ दें। और हर शरीक कब्र में लेटा हुआ कोई इंसान या लकड़ी का बुत नहीं होता, ज़िंदा शरीक भी बहुत से हैं हमारे। اہل ایمان کے ساتھ بہترین تعلقات جب رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے اس میں آپ کو خیر بھی دیں گے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے عقل سے کام لینے والے لوگوں سے اللہ راضی ہوگا۔ آپ جب قرآن پاک کھولتے ہیں نا تو آپ کو ایک بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا اللہ وہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور ہمارے وجود کو بنایا۔ آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے اللہ سے محبت ہو گئی، کیوں بھائی؟ آسمان دیکھ کے نہیں ہوئی تھی؟ یہ بادل تیرتے ہوئے تمہیں اللہ کی محبت نہیں دیتے تھے؟ یہ کبھی پہاڑی علاقوں میں نہیں تم گئے؟ تو حقیقت یہ کہ ہمارے سامنے پھیلی ہوئی کائنات اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تعارف ہے۔ زمین آسمان کی صورت میں کارخانوں کے کارخانے لگے ہوئے ہیں، انڈسٹریز ہیں، یہ ملیں ہیں، کوئی بادل بنانے والی فیکٹری ہے، کہیں آپ دیکھتے ہیں تو موجے مارتا ہوا سمندر ہے، اور ہر چیز بول بول کے بتاتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے، اور ہر چیز میں تضاد ہے، آسمان اوپر زمین نیچے، گرمی سردی، سورج چاند ستارے، ہر چیز اتنی مختلف ہے کہ ہر چیز بول بول کے آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی رب ہے، کوئی کائنات کو چلانے والا مالک ہے۔ تو کیا ان کو دیکھ کر آپ اللہ سے پیار نہیں کرتے؟ آپ گرمیوں میں ہلی ایریاز میں جائیں، اللہ پہ پیار نہیں آتا کیا؟ آپ وہاں جا کر نمازیں چھوڑ دیں گے؟ وہاں تو ہزاروں سجدے مچلتے ہیں۔ ہم جب ناروے میں گرمیوں میں جاتے ہیں نا باہر گھومنے کے لیے، ویسے قریب میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن ایک تو سیر کے لیے جائیں تو اپنا موڈ بنا ہوتا ہے، اور وہاں کائنات کو دیکھنا، نیچر کو دیکھنا، یقین کریں سانس کی آواز بھی اپنی محسوس ہوتی، بریدنگ آپ فیل کر سکتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ بریتھ ٹیکنگ۔ کئی کئی جگہوں پہ جا کر تو بندے کو چٹکیاں دے کر اپنے آپ کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، خواب نہیں ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بندہ کوئی فینٹسی ورلڈ میں گیا ہوا ہے، کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ کائنات کو دیکھا کریں نا آج کے بعد، تو ذرا باہر نکلے۔ جتنا پیار آپ کو قرآن پڑھ کے اللہ پہ آتا ہے نا، اتنا ہی پیار آپ کو اللہ سے کائنات کو دیکھ کر بھی آنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نیو یارک جا کے بھی نماز پڑھیں، ڈزنی لینڈ جا کے بھی پڑھیں، اچھا وہ ہم اورلینڈو جائیں پھر وہاں بھی نماز، نہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، نہیں، کچھ تو سہولت ہونی چاہیے۔ میں کہتی ہوں لوگوں کو حرم میں جا کر بھی کوئی نہیں اللہ پہ پیار آ رہا ہوتا۔ تو دل کی نگاہوں سے کھولیے، اس دفعہ آپ اگر گرمیوں میں کہیں جائیں، چھٹیوں میں بچوں کو کہیں لے کر خود جائیں، تو کائنات کو اللہ کی نظروں سے دیکھیں۔ ہم اندر کی نگاہیں بند کر کے کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم ہر وقت بند کمروں میں، گھٹن ہوتی ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی دیواریں، انسانوں کی بنائی ہوئی چھتیں، دل کرتا کھلی جگہ پہ چلے جاؤ۔ دن میں کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ضرور اوپن ایئر میں بیٹھیں، ہمارے ان ملکوں میں تو رواج ہی نہیں ہے۔ باہر واک کریں گے تو کیا کریں گے آپ؟ 10 قسم کے آپ کو غم ہے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنے میں بھی خطرے ہیں، سو نہیں سکتے۔ تو کائنات اللہ کا تعارف ہے۔ اب جب دنیا والوں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ دنیا والوں کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کی چیزیں دیکھتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آپ کے اوپر ایک شینگلیر لگا ہوا ہے اور آپ سو رہے ہیں نیچے، سوتے کہیں گے ہائے یہ کس نے بنایا، یہ فانوس کہاں سے آیا، یہ کتنا پیارا ہے، یہ کرسٹل کی لڑیاں ہیں وہ ہیں، تو آپ پتہ نہیں کہاں کھو جائیں گے۔ اور جب کھلے آسمان کے نیچے کبھی آپ سوتے تھے تو آپ دیکھیے ایک ایک ستارے سے باتیں کرنے کو دل کرتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ سے محبت نیچر کے ساتھ رہنے والے کو زیادہ ہوتی ہے۔ صحراؤں میں، پہاڑوں میں، عربی، بدوی، پہاڑی لوگ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو آج سے اپنی زندگی میں ایک گول بنائیے کہ مجھے اللہ سے محبت کا ہر موقع استعمال کرنا ہے۔ اپنی چیزوں کو بھی دیکھ کر اللہ سے محبت لیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے بڑا کمزور ہے، جیسے ایک چھوٹی سی بیل ہوتی ہے نا، بڑی کمزور ہوتی ہے، پاؤں میں ہی رل جاتی ہے، لیکن اسی بیل کا ایک سرا آپ اٹھا کر کسی درخت کے ساتھ باندھ دینا، کچھ دن بعد وہ اوپر جا کے پوری چھت بنا دیتی ہے۔ کبھی انگوروں کی بیلیں دیکھی ہوں یا کچھ اور، ہم کمزور سی بیلیں ہیں، ہمیں اللہ کا سہارا مل جائے تو ہم بہت بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے اندر اعتماد اور یقین ابھرتا ہے۔ تو جس سے بھی آپ متاثر ہیں وہ آپ کا خدا ہے۔ آج سائنس سے لوگ متاثر ہیں، گیجٹ سے متاثر ہیں، آج کے دور کا فتنہ تعلیم ہے، यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इधर से उधर, कुछ लोगों के ज़ाहरी भी लोग होते हैं, तो जितने बड़े हैं ये सब क़यामत के दिन आगे आगे भाग रहे होंगे और छोटे छोटे इनके पीछे होंगे, और वो छोटे समझेंगे कि इन बड़ों के सहारे पे तो हमने गुनाह किए थे, आज ये किधर चले गए। और हर वो बंदा जो दुनिया में अल्लाह से दूर होकर दूसरों से वाबस्ता हो रहा होगा ना, क़यामत के दिन उसको इतनी हसरत आएगी कि वो अफसोस करेगा कि एक बार अल्लाह मुझे दुनिया में वापस भेज दे तो मैं आज इनसे इतना बेनियाज हो जाऊं जैसे ये आज हुए हैं। शिर्क हकीकत में यही चीज़ है। अगले रुकू को पढ़ते हैं और फिर कुछ मज़ीद बात होगी। रुकू नंबर 5, 168 से 176, हलाल और हराम के अहकाम अल्लाह की तरफ से। या अय्युहन्नास, ए लोगो, ज़मीन में जितनी भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं इनको खाओ पियो और शैतानी राह पर मत चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई का और अल्लाह ताला पर इन बातों के कहने का हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं। और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो जवाब देते हैं कि हम तो इस तरीके की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया, गो इनके बाप दादे बेअक़ल और गुम करदा रहा हों। कुफार की मिसाल इन जानवरों की तरह है जो अपने चरवाहे की सिर्फ पुकार और आवाज़ ही को सुनते हैं, मुराद ये कि समझते नहीं। वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, इन्हें अक़ल नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ऐ ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दे रखी हैं इन्हें खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम ख़ास उसी की इबादत करते हो। तुम पर मुर्दार और बहा हुआ खून और सुअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है। फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला और ज्यादती करने वाला ना हो, इस पर इनके खाने में कोई गुनाह नहीं, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। बेशक जो लोग अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और इसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं, यकीन मानो कि ये अपने पेट में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे बात भी ना करेगा और ना इनको पाक करेगा, बल्कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले और अजाब को मगफरत के बदले में ख़रीद लिया है। ये लोग आग का अजाब कितना बर्दाश्त करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर कैन यू टॉलरेट, कितना तुम्हें टेम्परेचर दें, 180, 250, 300, 360, जवाब दो। इन अजाबों का बायस यही है कि अल्लाह ताला ने सच्ची किताब उतारी और इस किताब में इख्तलाफ करने वाले यकीनन दूर के खिलाफ में हैं। ये था जी हलाल और हराम का मामला। हकीकत यह है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने हमारी फितरत में अपनी तलब रखी है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, लोग इससे हट के शिर्क करते हैं। आपको इन आयात को सामने रख के शिर्क की एक डेफिनेशन लिखाना चाहूँगी। लिखिए, शिर्क क्या है? जज्बाते अबूदियत की तस्कीन के लिए अल्लाह के सिवा कोई दूसरा मरकज बना लेना, यानी अल्लाह के माँ सिवा को अपना विच बना लेना। वली कुल्लिन विच हतुन हुआ मुवल्लीहा, कल के बारे में पढ़ा था आपने। इंसान अल्लाह ताला की सबसे बड़ी और लाजमी ज़रूरत है। अल्लाह ताला की तलब इंसानी फितरत में बिल्कुल इसी तरह बसी हुई है जैसे कोई इंसान अल्लाह के बगैर नहीं रह सकता। इंसान की गुमराही अल्लाह को छोड़ना नहीं है, बल्कि असली खुदा की जगह फर्जी और नकली और मजाजी खुदाओं को खुदा बना लेना। शरीयत में हर उस चीज़ को हराम करार दिया है जो किसी भी दर्जे में इंसान की फितरी तलब को अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ मोड़ दे। इसमें मक्का वालों की कुछ रसूमात का भी तस्करा है। बुतपरस्त कौमें बुतों को बहुत अहमियत देती थी, बुतों के नाम पे जानवर छोड़ते और इन जानवरों से नफ़ा उठाना हराम समझते। किसी चीज़ को हलाल कहते, किसी को हराम, ये डिटेल हम सारी सूरत अल-अनाम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का दीन एक साइड पे रह गया और उसके बिलमुकाबिल एक खुद साख्ता दीन बना दिया। आज इस उम्मत मोहम्मदिया का भी यही हाल है। अगर आज लोग हम मुसलमानों के करतूत और वसफ़ देखकर कुरान लिखे तो शिर्क से भरा होगा कुरान। असल कुरान जिस वक्त मैं और आप पढ़ें, ये तो लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। और जो पढ़ा भी है वो भी अपनी किसी रोशनी में पढ़ा है, किसी फिक की रोशनी में, किसी नज़रिए की रोशनी में। अल्लाह सुब्हान तआला इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करता। याद रख ले, ये बात लिख के रख लें, अल्लाह ने हलाल और हराम अपने हाथ में रखा हुआ है। इस मुल्क के कानून में आप चेंजेस नहीं कर सकते, मानना पड़ेगा। दुनिया का कोई छोटा या बड़ा मुल्क अपने कवानीन दूसरे को हाथ में नहीं लेने देता। तो हलाल को हराम, हराम को हलाल करना, ये एक किस्म का अल्लाह के हक को अपने हक में लेना है। अल्लाह ताला ने ऐसी सारी चीज़ों को यहाँ पेश करके कह दिया कि शैतान तुम्हें बहकाता है। तुम्हारे दिल में जो जज्बा है, अबूदियत है ना कि मैं अल्लाह के आगे झुकूँ, अल्लाह की बात मानूँ, वो दूसरों से पूरी करवा लेता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ी बुरी मिसाल है, लेकिन समझ बड़ी अच्छी आती है। एक बीवी अपने शौहर की बीवी है, उसकी मनकूहा है, हलाल है। और ये जो लफ्ज़ भी यहाँ इस्तेमाल हुए ना, हलाल, हल्ला या हिल्लू से होता है, गिरा खोल देना, अननॉट करना, पाबंदी हटा लेना। जब आप कहते हैं ना कि अल्लाह ने ये चीज़ आपके लिए हलाल की है, तो मुराद है कि अल्लाह ने उसके ऊपर से ऑब्जेक्शन हटा दिया, एनओसी दे दिया। और क्या कहा, या युनस कुलू मिनत तयशी बात, पाकीज़ा और तैयब चीज़ें खाओ, ज़ाहरी और गंदगी से भी ये पाक हों और बातनी गंदगी से भी ये पाक हों। अब जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं ना, तो आपको मिसाल से बात समझ आती है। एक बीवी हक्के ज़ौजियत अपने शौहर के अलावा किसी और को दे सकती है? जस्ट वंस अपॉन ए टाइम दे सकती है, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर। शादी की रात बेगम कह देती है मियाँ को कि देखे जी, शादी तो मैंने आपसे कर ली है, अब्बा का प्रेशर था, ख़ानदान का प्रेशर था, नानी ने कह दिया था, दादी की आज थी, लेकिन मुझे फ़लां बंदा पसंद है, वो मेरा कज़न था या फलां था। अब मैं बीवी तो आपकी हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा उसके पास जाया करूँगी, और कुछ भी ना ना कहे तो ये कह देगी कि मेरे दिल दिमाग में अभी भी वो है, रहे मैं आपके साथ रही हूँ तो सब्र में वो है, रखेगा उसको, किक आउट कर देगा। अल्लाह में किक आउट नहीं करता। इतने शिर्क के बावजूद अल्लाह हमें रोटी भी खिलाता, कपड़े भी पहनाता, दुनिया की दौलतें, इज्जतें, प्यार देता, हम कहते हैं कुछ भी नहीं, अल्लाह बड़ा भोला है। आज अपनी ज़िंदगी से खुरच कर लफ्ज़ शिर्क निकालिए। कुरान शुरू हुए ना 30वें बारे तक, मैं आपसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश कर सकती हूँ, मुझे आपके नमाज, रोज़े, पर्दे, दाढ़ी, अबाय से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन मैं ये ज़रूर ख्वाहिश करूँगी कि आप इस कुरान के सफ़र में अगर मेरे साथ बैठे हैं, ट्रस्ट किया आपने मुझ पर, तो अपने दिल से गैर अल्लाह को निकाल दीजिए। खुर्ची है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु वलील्लाह, मैंने गैर को नहीं अपनाना। और ये थी सहाबा के दिल की कैफियत, जब दिल से गैर निकल गया तो हुक्मरान अल्लाह बन गया, तो फिर तो दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत यासीन। हम देसी लोगों का सबसे बड़ा इशू शिर्क है। पाकिस्तान अभी पाक नहीं हुआ आस्तानों से, दरगाहों से, मज़ारों से और सो ऑन, तो फिर अल्लाह ही का हौसला, कोई और खुदा होता ना अब तक डूब चुके होते हम, पानी समंदर का आता और हमें डुबो के ले जाता। तो इस तरह की बातें करके अपने शुक्र के इन जज्बात को किसी और के साथ लगा देना, अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद। फिर इसमें चूँकि खाने पीने की बातें हो रही है ना, ये खाना वो नहीं खाना, तो आप याद रखिए कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं ना, जैसे अभी आप भी कुछ खा के बैठे, मैंने भी खाया, ये खाने के बाद जो नेकी हमसे होती है या बदी होती है ना, ये उसका शुक्राना या उसकी नाशुक्री होती है। ज़रा सा सोचिए, अभी यहाँ आने से सुबह से लेकर अब तक क्या खाया आपने, किसने दिया, किसका अनाज था, किसका गल्ला था, अगर अंडा ब्रेड खाए तो अंडा कहाँ से आया, और अगर रोटी खाए तो रोटी कहाँ से, चावल दाल कहाँ से आए। बस इस खाने का हक अदा कर दें, वशकुरू लिल्लाह, अल्लाह आपको तैयब खाने की दावत दे रहा है, हल्ला या हिल्लो हिलाल, बस अपनी मर्जी से किसी चीज़ को पीछे करना। आप खाएं अल्लाह का और गुनगाएं किसी और के, आपकी मेड 24 घंटे आपके घर है, खाना पानी बिजली पानी सब, और उसके साथ पैसे भी आप दें, तो वो जाकर आपके हमसाए की बात मान दे या उसी को आपके खिलाफ करके कुछ ना कुछ इधर की उधर उधर की इधर करे, आप कितने दिन उसको रखेंगी। शिर्क ये है, हम अपना ऑनर बदल लेते हैं अंदर ही खाते हैं। बीवी किसी की है तो शौहर किसी और को बना लिया। तस्वुर में भी आपके को जचता, ये जो मैं आयतें पढ़ा रही हूँ ना, और दिल चाह रहा कि बाहर जाएं किसी वक्त समंदर पे जाकर देखे कैसे पानी आ रहा होता, फिर वहां खड़े होकर बोले दुनिया में शिर्क की क्यों गुंजाइश है। देखिए ना, एक बीवी उसके अपने शौहर से जरूरत ही नहीं पूरी होती तो वो तो इधर उधर मुंह मारेगी ना। एक बीवी अपने शौहर को सेटिस्फाइड नहीं करती तो मियाँ कह सकता है कि ये मेरी ख्वाहिश नहीं पूरी करती, तो क्या अल्लाह हमारी ख्वाहिश नहीं पूरी करता? अलैहिस्सल्लाहु भी काफ़ी नब्दा, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं अपने बंदों को? तो आपसे ये तकाजा है कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में डालें, अल्लाह को महसूस करें, और ये आपको हो जाएगी अगर आपने पूरे 30 दिन बगैर छुट्टी के, बगैर लेट स्लेट के, 100% फोकस होके मुसहफ खोलकर या कागज़ कलम लेकर ये कुरान सुन लिया, गारंटीड बात है कि आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह की नाराज़गी से आप डरने लगेंगी और अब फोकस हो जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को पाकर जो अल्लाह के लिए शुक्र के जज्बे उभरते हैं वही तो इबादत में डलते हैं। अल्लाह ने आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल कर कितने कंफर्टेबल माहौल में बिठाया हुआ है, तो इन मौके से फ़ायदा उठा लें। कुरान आपके दिल में अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी भी डालता है, और भी ये जो गंदी चीज़ें, जो हराम चीज़ें हैं, जो नाफरमानी की चीज़ें हैं, तवहुमात हैं, उसकी खुशी, उसकी ये वो है, ये सब छोटा रहता है। मेरा ओनर अल्लाह है, मैं सिर्फ उसकी सुनूंगी। मेरा मालिक अल्लाह है, मैं सिर्फ उसकी मानूंगी। मेरा हाकिम अल्लाह है, मैं सिर्फ उसकी मानूंगी। फिर अंदर से सब कुछ निकल जाता है, और जब निकलेगा ना तो फिर आप आज़ाद होंगे। वो एक सजदा जिसे तू गिरान समझता है, दिलाता है 1,000 सजदों से आदमी को निजात। और एक और बात कहूँ, लाखों कानों पे आवाज़ पड़ती है, लाखों आंखें नेकी की दावत सुनती हैं, फिर भी तौफीक क्यों नहीं होती? उसकी एक बहुत बड़ी वजह रिज़्क़ के हलाल का ना होना। कुरान का ये मुकाम इस काबिल है कि मैं आपको एक आध अहादीस सुना दूँ कि रिज़्क़ के हलाल का क्या असर है। यानी अगर मैं यहाँ कर बैठी हूँ ना तो मुझे ये पढ़ाने की तौफीक नहीं होगी अगर मेरे पेट में हराम के लुकमे होंगे, झूठ के, चोरी के, रिश्वत के, और सो ऑन। इसी को आगे क्यास कीजिएगा। आज बहुत सारे लोग नेकियां चाहते हैं, अकेले में मेरे साथ जितने लोग मिलते हैं रोते हैं धोते हैं, बड़ा दिल करता है कुरान पढ़ लें, बड़ी ख्वाहिश है। हम आएंगे, हम बैठेंगे, और आने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं आते। आप ढूंढिएगा, ज़रूर रिस्क के सोर्स में कोई गड़बड़ होगी। एक, जब किसी की औलाद ना फरमान हो सारी कोशिशों के बावजूद, तो मान ले के कहीं ना कहीं अल्लाह के साथ कोई जंग लगी हुई है। फाजन बे हरबे मिन अल्लाह व रसूली, अल्लाह वो औलादों की सूरत में सजाओं में दे देता है। रिस्क के हलाल का असर, जैसे गाड़ी में सही पेट्रोल डाला हो तो गाड़ी भागती है, और सस्ता पेट्रोल, कचरे वाला पेट्रोल डाल दें गाड़ी झटके देती है। पेट में हराम हो तो कुरान की बातें नहीं समझ आती, नींद आएगी, यॉनिंग आएगी, सुस्ती आएगी, भूल जाएगा, अहमियत नहीं, नहीं ना रोज़ा है, गर्मी है। अल्लाह के बंदो, रोज़ा है तो शुक्र करो, गर्मी किधर है तुम्हारे इर्द गिर्द, और सो ऑन। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अल्लाह के नबी की हदीस सुन लीजिए, बुखारी की रिवायत है 1410, अबू हुरैरा रावी हैं, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला सिर्फ पाकीज़ा कमाई से ही सदका कबूल करता है। आप और मैं भी पाकीज़ा ही कबूल करते हैं, हम भी ख़राब चीज़ नहीं कबूल करते, तो अल्लाह तो बहुत गयूर है। हज़रत उमर कहते हैं कि अल्लाह के हलाल और हराम पर पाबंद शैतान की खुल्लम खुला दुश्मनी है। यदि शैतान की जंग लगी हुई है इंसानों से, उसने भी पहले शजरे ममनुआ के पास ले जाकर यही कुछ किया था कि हराम को हलाल बनाना चाहा। और वो रिवायत तो आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी, सही मुस्लिम में 2346, कि एक शख्स लंबा सफ़र करके आता है, गर्दो गुबार में भरा हुआ है, और अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहता है, या रब्बी या रब्बी, ए रब ए रब, हालांकि गुदिया बिल हराम, हराम से गजा दिया गया, मलबसहु हराम, इसका पहनना हराम, लिबास हराम, पीना हराम, गजा हराम, फिर अल्लाह कैसे उसकी दुआ कबूल करे? जैसे ही मुस्लिम 2346 नंबर है, तो इंशाल्लाह रिस्के हलाल की कोशिश करनी है। फिर अगर एक जिस्त में इस पूरे रुकू को देखे तो मेन पॉइंट्स क्या समझ आते हैं, कि शैतान हराम का रास्ता दिखाता है, अल्लाह के रास्ते पर चलने से इनकार करवा देता है, हलाल और पाक चीज़ें पीछे डलवा देता है, अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें हराम की गई हैं उसका किसी को हक नहीं है कि हलाल करे। वह अमरे मजबूरी, यानी जान बचानी हो तो सिर्फ चंद लुक्मे, ताकि वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ हलाल मिले उसकी इजाज़त है। और आपने देखा कि इसमें हलाल हराम की बातों के एंड पे इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़ला, अल्लाह के अहकामात को छुपाने की बात आई। ये क्यों? क्योंकि अक्सर लोग दीन के नाम पे ऐसे मसाइल छुपा लेते हैं, क्योंकि इससे फिर हमारी पॉपुलैरिटी कम होगी, फिर लोग नहीं सुनेंगे, कम लोग आएंगे, फिर हमारी मस्जिद वीरान हो जाएगी। कुरान में से कुछ छुपाना, ये तो मैं अपने बारे में आपको दावे से कह सकती हूँ, ना मैं कोई चीज़ एग्जैजरेट करूँगी और ना मैं कम करूँगी। जो कुरान ने जिस चीज़ को जिस रेशियो पर पोर्शन में आपके सामने रखा, मैं तो वही बयान करूँगी, क्योंकि मुझे अपने पास से कोई बात करनी आती नहीं है। लोगों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज़ करके इंसान क्या करेगा? क्योंकि कुरान पढ़ाने वाले पर एक ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है, लोगों की मर्ज़ी की बातें कीजिए, नरम बातें बताइए। हिकमत और चीज़ है, लेकिन फैक्ट्स कभी नहीं बदलेंगे। और अल्लाह ताला ने किताबें बरहक चूँकि नाजिल कर दी, तो इस रुकू से हमें अल्लाह की रज़ा पाने के लिए जो रवैये मिलते हैं, आज नियत कीजिए, चाहते हैं रदी अल्लाह अनहु में शामिल हों तो हलाल खाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और सिर्फ़ उसकी ग़ुलामी करनी है।